تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ حلیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کریم اور آیات سے خدا کی روشنی میں اسلامی گھرانے کے عنوان سے آج دوسری نشست میں آپ تمام خواہران کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہوگی۔ اگر کل کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ تحریری طور پر لکھ کر نشست کے آخر میں، پہلی نشست کے آخر میں یا دوسری نشست کے آخر میں ہم تک پہنچا دیے گا، تاکہ ایک ساتھ سارے سوالوں کا جواب دے دی جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہماری گفتگو فیملی کے عنوان پہ ہو رہی ہے، خانوادے کے آئلے کے عنوان پہ ہو رہی ہے کہ اسلامی فیملی کے کیا اصول و قوانین ہیں، اور قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کس طریقے سے اپنے گھر کو ایک صحیح، جامع، کامل اور متوازن اسلامی گھرانہ اور فیملی بنا سکتے ہیں۔ کل جو ہماری گفتگو تھی وہ بچوں اور والدین اور گھر کے جو بزرگ افراد ہیں ان کے درمیان تھی کہ ان کا بیہیویئر، ان کا کردار، ان کا سلوک، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا بیہیویئر اپنے گھر کے چھوٹوں سے، یعنی جو گھر کے والدین کہلاتے ہیں۔ کل ہم نے تین قسم کے درجات گھر میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ پہلے مرحلے پر بزرگ حضرات ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، اس کے بعد والدین یعنی میاں بیوی، اس کے بعد اولاد یا بچے جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہیں۔ کل ہم نے بچوں کے متعلق گفتگو کی کہ بچے والدین سے، بچے بزرگوں سے کیسے بیہیو کریں، اور اسی طریقے سے جو گھر کے بزرگ ہیں وہ بچوں کے سامنے ان کے والدین سے، یعنی دوسرے نمبر کے افراد سے، یا ان کے والدین سے ان کے بچوں کے لیے کس طریقے سے گفتگو کریں۔ کل اس پہ تقریباً گفتگو ہو چکی، آج مزید نکات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آج جو گفتگو ہے ہماری وہ ہے گھر کے بزرگوں سے متعلق۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ کچھ اور نکات بھی آ جائیں گے جو کل سے متعلق تھے، لیکن چونکہ وہ کل وقت نہیں مل سکا تھا اس بنا پر ہم اس کو بیان نہیں کر سکے، تو آج اس کو بیان کریں گے۔ گھر کے بزرگ، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں یہ در حقیقت ہمارے سامنے ثقافت کو، تجربات کو ہمارے سامنے مجسم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے بزرگ ہیں، اور کہ جس میں روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے کہا السلام علیکی یا فاطمہ، آتے ہی جناب فاطمہ زہرہ پہ سلام کی، اللہ کا رسول ہے، بزرگ ہے، باپ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں آنے کے بعد سلام پیش کرتا ہے۔ تو جناب زہرہ کہتے ہیں وعلیک السلام یا اباتا، اے پدر بزرگوار آپ پہ بھی سلام ہو۔ اس کے بعد جو گفت و شنید ہوئی، جو ڈائلاگ ہوا ان کے درمیان، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں پر جو نقطہ یہ ہے بزرگوں کے لیے، خصوصاً جو گھر میں ساس یا سسر کے درجے پر رکھتے ہیں، کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھر کے افراد سے برتاؤ کریں۔ بزرگ ہمارے معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ کچھ نکات ہیں جو میں نے یہاں پر، میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہیں، وہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ افراد ہیں جو گزشتہ امتوں کے تجربات، ثقافت، علم اور اسلاف کی روایات کو نوجوان نسل کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب چونکہ خواتین ہیں اس لیے میں ہنٹس دیتا ہوا گزر جاؤں گا۔ گھر کی جو بزرگ ہوتے ہیں، خصوصاً ساس ہیں یا بڑی نند ہیں یا بھابھی ہیں، ان کو بڑے ٹوٹکے آ رہے ہوتے ہیں، हुसन वो ख़वातीन जिनके यहाँ छोटे बच्चे मौजूद हों और वो चूँकि तजर्बेकार होती हैं, तो जो घर की बड़ी ख़वातीन होती हैं, सास होती हैं, बड़ी नंदे होती हैं या जेठानी होती हैं, उनके पास टोटके होते हैं, वो उन टोटकों को बयान करती हैं और उन टोटकों से जो है वो बड़ा काम हो जाता है। तो ये वो अफराद हैं कि जो असलाफ़ की रिवायात को, इल्म को, तजर्बे को, सकाफ़त को हम तक पहुंचाते हैं। दर हकीकत बुज़ुर्ग अफराद वो सायादार घना व घना दरख्त होते हैं जो नई और नौजवान नस्ल को आराम और सुकून की फरहमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। और कल हमने सलाम के बारे में तफसील से बयान किया था कि सलाम क्या है और सलाम करने का जो अदब है, सलाम करने का जो तरीक़ा है वो क्या है। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाए, देखिए एक है दखला फिल बैत, घर में दाखिल हुआ, ठीक है ना, लेकिन एक वक्त हम कहते हैं दखला अलैया अबी रसूलुल्लाह, जनाब ज़ाहरा फरमा रही हैं मेरे दाखिल हुए और मेरे पास आए, यानी दखला अलैया अबी रसूलुल्लाह, इसका ज़ाहरी तर्जुमा ये मुझ पर यानी मेरी तरफ मेरे वालिद आए, अलैया यानी मुझ पर यानी मेरी तरफ, यानी मेरे पास आए, घर में दाखिल होने के बाद सलाम नहीं किया, बल्कि घर में दाखिल होने के बाद जब नफ्स नफीस जनाब ज़हरा पर नज़र पड़ी तो आपने कहा सलाम अलैकी, ठीक है ना, या फातिमा, फातिमा नाम लेकर जनाब रसूल खुदा ने जनाब ज़हरा को मुखातब करार दिया। ठीक, तो यहाँ पर वो इस सलाम का यानी सामने जब कद अकबाला, जैसे कि हमने कल बयान किया था कि सामने जाकर माँ के सामने खड़े होकर बनफ से नफीस इमाम हसन और इमाम हुसैन ने जाकर सलाम पेश किया है, यहाँ पर भी यही है। और रसूलुल्लाह की सिफत थी कि वो छोटों को खुद सलाम पेश किया करते थे सबसे पहले। रसूलुल्लाह खातमुन्नबीयीन हैं, अफजलुल मौजूदात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना जो इज्तिमाई मनसब है उनका, दीनी मनसब है, यानी खातमुन्नबीयीन यानी खातमुल अंबिया खातमुर रसूल, उसका रोब नहीं झाड़ते, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं जनाब मैं रसूलुल्लाह हूँ तुम मुझे सलाम करो, होते हैं कुछ लोग थोड़ी सी बड़ाई मिल जाती है, थोड़ी सी फजीलत मिल जाती है, अकड़ने लग जाते हैं, सब लोग उनको आके सलाम करें, सब लोग उनके पास चल के आएँ, सब लोग उनके सामने जानू अदब तय करें, लेकिन रसूलुल्लाह का सलाम करना एक मैसेज ये है कि इंसान जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए उसको अपना मनसब और अपना मुकाम और मर्तबे का रोब नहीं झाड़ना चाहिए कि जनाब मैं बड़ा हो गया मुझे सलाम करो, क्योंकि देखने में आता है इंसान को थोड़ी सी भी अगर बड़ाई और शोहरत और मुकाम मनसब मिल जाए तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है, वो अपनी तौहीन समझता है, कसर शान समझता है कि वो किसी को सलाम करे, उसकी तवक्को ही होती है कि लोग उसे सलाम करें। पहला नुक्ता ये। दूसरा नुक्ता ये कि इंसान अपने दायरे कार और मनसब को बिला वजह कि जहाँ ज़रूरत ना इस्तेमाल ना करे, जहाँ पे ज़रूरत हो काम हो कहो, तो फिर मसलन रसूलुल्लाह ने कई जगह कुरान में अना रसूलुल्लाह, मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ, वहाँ पे बयान किया, लेकिन घर में और दूसरे निजी मामलात में रसूलुल्लाह उसे बयान नहीं करते। तीसरा नुक्ता कि किसी को सलाम करने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि उसकी आला ज़र्फ़ियत ज़ाहिर होती है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगुहों कर भरा करती है पैमाना। फिर इन अपने इख्तियारात को बिला, चौथा नुक्ता, अपने इख्तियार को बिला वजह और ज़रूरत इस्तेमाल करने से इंसान की शख्सियत में ना सिर्फ ये कि झोल आता है बल्कि उसकी शख्सियत का वजन भी कम हो जाता है। ये नुकात। अब इसमें जो पैगाम मिलता है हमें, पैगाम नंबर एक ये है कि हम अपने छोटों को और अपने बड़ों को यानी हम सब को ये बात समझनी चाहिए कि बुज़ुर्ग और मुअम्मर हज़रात माशरे और हमारी मशरक़ी ज़िंदगी का सरमाया है। हज़रत अली का एक कौल है कि मुझे जवान की ताकत से ज़्यादा बुज़ुर्ग का मशवरा अच्छा लगता है। पहला नुक्ता ये। दूसरा नुक्ता ये कि बुज़ुर्ग अफराद को भी चाहिए, ठीक है आप दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, सास हैं, ससुर कोई भी हैं, वो अपनी बुजुर्गी बड़ेपन आला ज़र्फियत की हिफाजत करते हुए अपने मुआशरती मुकाम मनसब और इख्तियारात को बिला वजह इस्तेमाल करने से गुरेज करें। हम सास हैं हमें उठ के सलाम किया जाए, होती कुछ सासें होती हैं टेढ़ी, कुछ सुसर होते हैं बहुत ही टेढ़े मेढ़े किस्म के, जलेबी की तरह बहुत सीधे होते हैं। सुना है आपने, जलेबी बहुत सीधी होती है, ठीक है ना। वो सास ससुर इसी तरह किस्म के होते हैं, बहुत सीधे होते हैं बेचारे, लेकिन जलेबी की तरह। जी कुछ कह रही हैं? नहीं कह रही। उनके शायद को तजर्बा मुंतकिल करना चाहिए। दुरुद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। अच्छा होता क्या है कि जाहिर बात है कि एक 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, 65 साल का इंसान, उसने ज़िंदगी गुजारी है ख़ास नहज में, उसूल कवानीन के मुताबिक। नए कवानीन ज़िंदगी गुजारने के उनको समझ में नहीं आते, इस वजह से जनरेशन गैप आता है। आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात आपके अपने वालिदैन जो हैं वो आपकी बात नहीं समझ रहे, चले जाए कि आप किसी दूसरे के घर में जाएं, यानी शोहर के घर में जाएं, यानी वो आपका घर है, यानी बहरहाल तो किसी दूसरे के घर में जाएं, फिर वो आपका घर हो और फिर वहाँ पर वहाँ आपके सास ससुर हों, तो उनके लिए बड़ा नागवार होता है कि मसलन एक नौजवान बच्ची या बच्चे से जो है वो डिक्टेशन लें, या मिसाल के तौर पर उसके मशवरे पे चलें। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बुज़ुर्गों का एहतराम जो है वो मद्देनज़र रहे हमारे, उनकी बुज़ुर्गी को ठेस ना पहुँचे और आप जो हैं वो अपना मकसद पूरा कर सकें। चौथा नुक्ता ये मिलता है कि अपनी औलाद नवासे नवासियों या पोते पोतियों या बहू दामा समेत माशरे के अफराद से, उन अफराद से कि जिन्हें आपकी शख्सियत का कद नहीं मालूम। हर कोई आपकी शख्सियत का एक कद है कि आप बहुत ऊंचे मसलन माशरती सतह पे फजीलत बरतरी रुतबा मुकाम रखते हैं, हर किसी को तो नहीं मालूम ना, कोई भी मिलने आएगा उसको तो नहीं मालूम। लिहाजा वो अफराद या वो बच्चे घर के या वो दामाद या बहू जिनको आपकी शख्सियत का कद नहीं मालूम, हरगिज़ इस बात की तवक्को ना रखें बुज़ुर्ग अफराद कि वो आपको वही मुकाम दें कि जैसे आपकी जवानी या खिदमात को अंजाम देते वक्त दिया जाता था। यानी ऐसा ना हो कि जैसे दूसरे लोग कहते हैं सर आइए बिस्मिल्लाह, आप घर में भी आके जो है ना वो अपना सरपना दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, ऐसी तवक्को रखना बेकार है। और रसूलुल्लाह आके सलाम करते हैं बहुत सीधे तरीके से। अपने अंदर लचक पैदा करें, हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। बुजुर्ग हजरात सही है कि आप उम्र रसीदा साहिब तजर्बा बाइल्म बुजुर्ग और बड़ी शख्सियत के मालिक सही, लेकिन अपनी शख्सियत के गुरूर को तोड़ें और बाहम शीरो शिकार होने के फार्मूले को अपना कर अपने घर समेत माशरे को जन्नत बनाएं। कोशिश करें मिलजुल कर हंसी मजाक प्यार मोहब्बत से। सातवां नुक्ता, बुजुर्गों का छोटों को सलाम करना दर हकीकत आपके वारिस सकाफत असलाफ के ओहदे पर मोहर सख्त करेगा। आप सकाफत असलाफ के वारिस हैं, आप जब सलाम करेंगे तो बच्चे भी आपसे वही सीखेंगे और यूँ आप अपने बच्चों को तरबियत दे सकेंगे कि बुज़ुर्गों का एहतराम कैसे किया जाता है। दादा जान, दादी साहिबा, नानी अम्मा, नाने अब्बा, कितनी मिठास है इन नामों में, कितनी शीरिनी है इन नामों में, लेकिन इससे ज़्यादा शीरिनी आपके अखलाक में होनी चाहिए ताकि आप उसे अमली तौर पर घर में मुंतकिल कर सकें। मोहतरम सास साहिबा, ये तसव्वुर मत कीजिए कि आपकी बहू आपके बेटे पे हुक्मरानी कर रही है, बल्कि अपना वक्त तसव्वुर कीजिए जब आप अपनी सास साहिबा को समझाना चाहती थीं और वो समझने से कासिर होती थीं। वही समझ रही थी मुझ पर डोरा डाल रही, जादू किया है और पर्चा कटवा दिया है और कोई तावीज़ गंडे कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़माना तो नहीं है। आप उसको समझाना चाहती थी अपनी सास को कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ये आपकी मनफी सोच है मसलन, तो वो समझने से कासिर थी। तो अब आप अपने अमल से उसे समझाएं और आप उसको जो है वो मुकाम व मर्तबा दें ताकि जब आपकी आपकी बहू सास बनेगी तो वो आने वाली अपने बहू के लिए किस तरह बिहेव करेगी। ससुर साहब, आप हर चीज़ पर मिस्टर ब्रेक फुल स्टॉप अकड़खूँ और ज़िंदगी की रट लगाने वाले न बने, बल्कि तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद आपकी खुश अखलाकी, खंदा पेशानी और आला ज़र्फियत आपके घर का महवर मरकज और जान बना देगी, यानी आपको घर का महवर और मरकज बना देगी। ये वो चीज़ें हैं कि जो हम अपने माशरे में देखते हैं, और अगर कहीं हमें ये चीज़ें नज़र आएँ कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बेजा तवक्को रखते हैं या अपने इज्तमाही मनसब का इजहार कर रहे हैं तो उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए। अब ये देखें कि रसूलुल्लाह आए और उन्होंने कहा कि वालेक सलाम या बता फ़काला इन्नी अजदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा, बेटा मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। फ़कुल तो लहू, क्या फ़रमाया? उईज़ु का बिल्लाह या बता मिन अज़ुफ़, मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूँ कि आप कमज़ोरी महसूस करें। फिर जनाब रसूल खुदा ने कहा या फ़ातिमा ईतीनी बिल किस्सा यमानी वग़त्तीनी बे, एक चादर लेकर आओ यमनी और मुझे उड़ा दो। पहले रसूल ने सलाम पेश किया और उसके बाद जनाब जहरा से एक हेल्प उन्होंने मांगी, एक मदद मांगी है कि बेटी मैं अपने बदन में कमज़ोरी और ज़ाफ़ महसूस कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे एक चादर यमनी ला के उड़ा दो। हालात वही में से रसूलुल्लाह के बारे में है कि जब वही नाजिल होती थी तो बाज़ औक़ात आपको पसीना आता था और आपके बदन में थरथराहट आती थी और आपको कमज़ोरी महसूस होती थी, लेकिन रसूलुल्लाह आए, घर में दाखिल हुए, जनाब ज़हरा के सामने गए, सलाम किया, उसके बाद कहा बेटी मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस करो, मुझे चादर ला दो। रसूलुल्लाह इससे आला और अरफा हैं कि जनाब ज़हरा से मदद मांगे या उनसे कहें कि मुझे चादर ला के दो, यानी आप चाहते तो डायरेक्ट जाते और कमरे में जाके इस्तराहत कर लेते। जनाब ज़हरा कभी कुछ नहीं कहती, मुहाल था कुछ कहती कि जनाब मेरे बाबा आए बगैर इजाज़त के अंदर चले गए और जाके इस्तराहत कर लेते, लेकिन रसूलुल्लाह का ये अमल बुज़ुर्गों के लिए दर्स है कि देखिए ये घर आपने बनाया है, बेटा और बेटी आपका है, आपने उसे परवान चढ़ाया है, आपने उसे तालीम दिलाई है, सब तमाम चीज़ें आपने अंजाम दी, आपकी वसीलियत से अंजाम पाई हैं, और अब उसकी बीवी आ गई है या उसका शौहर आ गया है, और अब आप जो हैं मिसाल के तौर पर ये ना समझे कि घर का निज़ाम आपके हाथ से निकल रहा है, बहू आके जो वो डोरे डाल रही है, बहू आके जो है वो मिसाल के तौर पर कब्ज़ा कर रही है, हरगिज़ नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह का ये फेल समझाना चाह रहा है कि ऐ घर के बुजुर्ग, सास हो, ससुर हो, नाना हो, नानी हो, दादी हो, कोई भी हो, तुम घर के नज़्मो नस्क को दर हकीकत नौजवान उमंग के सुपुर्द करो, और फिर सुपुर्द करने के बाद उनसे हमांगी कोऑर्डिनेशन करो प्यार और मोहब्बत के जरिए से। यही वजह है कि रसूलुल्लाह घर में दाखिल हुए, सलाम किया, सलाम का जवाब सुना, और उसके बाद आपने कहा कि मेरी हेल्प करो। किस तरह हेल्प करो? मुझे चादर ला के दो। अगर चाहते तो खुद इस तरह फरमा लेते। यहां पर कुछ नुकात हैं जो आपकी खिदमत करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, बुजुर्ग हर चीज को अपनी अना का मसला ना बनाए। मैं अपनी बहू से कहूं? हरगिज़ नहीं। सास कहेंगी मैं अपनी बुजुर्ग, बात होता है नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, नहीं समझ पाती बुजुर्ग ख्वातीन जो है अपनी नौजवान सास बहू की बातें, कुछ और समझने लगती हैं, ऊंचा सुनती हैं, आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ सुना, अच्छा मुझे ये कह रही थी, और फिर वो वहाँ से दूसरे सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अव्वल तो ये कि आप यानी जो नौजवान ख्वातीन यहाँ मौजूद हैं जो अभी बहू नहीं बनी हैं, कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा घर, अच्छा शौहर, अच्छे ससुराल जो है वो आपको मरहमत फरमाए, वो ऐसे इलाही अमीन तो छत से भी ऊपर नहीं जाएगी, ऐसी इलाही अमीन कह के अर्श हिल जाए। होता है कि नहीं समझ पा रहे होते बात, और या समझने से कासिर होते, या बाज़ वक़्त नहीं समझना चाहते, ये भी होता है, यानी वो तज़ाहुर कर रहे होते हैं, जैसे कोई आपने कहा कि चाय लाऊं अम्मा आपके लिए, सुना ही नहीं उन्होंने, वो चाहती हैं दो तीन दफ़ा आपकी मीठी आवाज़ को अपने कानों से सुने, फिर कहें हाँ अच्छा चाय ले आओ, मिसाल के तौर पे, तो आपको ये ना कहें हाँ बढ़िया जो है वो सुनती नहीं है मेरी बात, नहीं आप कहेंगे नहीं वो मेरी मीठी आवाज़ को सुनना चाहती हैं, चाहती हूँ मुझसे और प्यार भरे लहजे से बकौल, लेकिन अगर आप ये तस्वीर कर बैठे हाँ ये तो बस नाजिल हो गई, अल्लाह करे जल्दी से जाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बहू हो, ये जो आप मनफी ख्यालात दूसरे के लिए रख रही हैं ये शरण जायज़ नहीं है, ना बहू के लिए सास के लिए रखना, ना सास बहू के लिए रखे, किसी सूरत में जायज़ नहीं है ये। बुजुर्ग अपने छोटों से मदद तलब कर सकते हैं, नाक का मसला ना बनाएं। अगर यहाँ कोई सास साहिबा हैं, नाना नानी नानी हैं, दादी हैं, तो वो अपनी बहू से मिसाल के तौर पे बच्चों से प्यार मोहब्बत से बना के रखें। दूसरी चीज़ ये कि घर और घरेलू जिंदगी में बेजा मुदाखलत से परहेज करें। प्यारा घर अगर आप चाहती हैं, बेटा भी सुकून में रहे, बहू भी सुकून में रहे, बच्चे भी सुकून में रहे, आप भी सुकून से, बेजा मुदाखलत न करें हर चीज़ में। यहाँ क्यों रखा है ये बर्तन, क्यों रखा है इसको, क्यों क्यों गया हर चीज़ में। अब बुजुर्गों की आदत होती है ना, हत्ता कि उनकी भी कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो वो बड़ा चीखते चिल्लाते हैं, माजरत के साथ अगर कोई है। बेजा मुदाखलत ना करें। हाँ, जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे इंसान बोले, समझाए और निशानदेही करे गलती की। तीसरा, हर जगह अपनी राय और नजर का बिला वजह इजहार ना करें, बिला वजह इजहार ना करें बुजुर्ग। मुमकिन, चौथा नुकता, मुमकिन है आपको किसी चीज की हाजत और जरूरत हो और वो घर में मौजूद ना हो, लेकिन अगर आपने कहा भाई मेरे लिए ये लेकर आओ, अब हो सकता है घर मौजूद ना हो, बेटे के पास पैसे ना हो, बहू के पास ऐसे वसाइल ना हो जो वो शर्मिंदा हो जाएगी, ये शर्मिंदा हो जाएगा बेटा। लिहाजा ऐसा ना हो कि इशारों किनाइयों से उसको बयान कीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं मेरे लिए लेकर आओ, शर्मिंदा होगा आपकी औलाद, आपकी बहू, आपके बच्चे। लिहाजा ऐसा ना हो कि आप की वजह से वो सख्ती में हो। ये जनाब जहरा के हवाले, यानी बुजुर्गों के हवाले से। अब इसमें जो पैगाम है हमारे लिए वो ये है कि घर के माहौल की जिम्मेदारी चूंकि खवातीन के हाथों में होती है, कि जिसमें सारे फहरिस्त बहू होती है, और घर का अखराजात और जिम्मेदारी और खर्च और ये सारी चीज़ें बेटे और बहू दोनों पे आती है, तो बेटे कमा के लाता है या बहू को दे देता है, बहू फिर अपने हिसाब से चलाती है। लिहाजा बेहतरीन सास वो है कि जो दर हकीकत इन तमाम मामला से ला ताल्लुक रहे, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जाहिर बात है कि एक नयाम में दो तलवारें रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। यानी आप तसव्वुर कर रही हैं कि सास और बहू जो हैं दो तलवारें हैं, ठीक है ना, इसमें मतलब ये आज हकीकत खुल के सामने आ गई, आप ख्वातीन ने एतराफ़ कर लिया। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बल्कि मुनासिब अंदाज से आप तज़क्कुर दें, याद दहानी कराएं, इशारतन किनायतन, ना ये कि हाथ पे आता कि बैठ जाएं सास साहिबा और कहें जनाब ये करो और वो करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आप ज़िंदगी गुजार चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बेटा भी है, बेटी भी है, पोते भी हैं, पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, ऐसा बेजे मुदाखलत करके जो है वो ज़िंदगी को ख़राब ना करें। अब आइए एक और आखिरी नुक्ता, कि मुमकिन है आप किसी चीज़ को अपनी आसानी के सबब किसी ख़ास जगह रखें और वो बच्चे या बहू या बेटा जो है उसको उठा के कहीं और रख दे, और वो लेकिन अगर आपने जो है उस पे जो है ना वो आसमान सर पे उठा लिया, उससे क्या हो, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, ये छोटों के भी समझने की बात है कि वो अपनी सास ससुर या वालिद की चीज़ों को मुनासिब जगह रखें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो ढूंढने में और इस्तेमाल करने में। अब यहाँ पे हम आते हैं कि क्या रवैया होना चाहिए बुज़ुर्गों का और बड़े अफराद का, यानी दामाद का और बहू का अपने सास ससुर से और ये अपने वालिदैन से, लड़का है अपने वालदेन से, लड़की है अपने वालदेन से शादी के बाद। ये रिश्ता जो है वो मिसाली रिश्ता होना चाहिए, प्यार भरा मोहब्बत भरा रिश्ता होना चाहिए ताकि उसके असरात घर के छोटे बच्चों पर पड़ें। अगर घर के बड़ों में ना इत्तेफाकी होगी, नोकझोंक होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तलख़लामी होगी, सख्त नारावा बातों की तकरार होगी, ना मुनासिब अल्फाज अदा किए जाएंगे, तो बच्चे जो सुन रहे हैं उन पे बुरे असरात मुरतब होंगे। जबानी जंगो जदल सामने आएगी जिससे घर का सुकून और ठंडी फिजा ख़राब हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो मासूम बच्चे हैं उनकी जहनीत पर, उनकी मासूम हसास और शीशे जैसी जहनीत पर बुरे असरात मुरतब होंगे। हदीसी किस्सा की रोशनी में घर में दाखिल होने के बाद घर के बुज़ुर्गों को और बड़ों को ये उमूर अंजाम देने चाहिए। अब मैं वो उमूर आपके सामने बता रहा हूँ। رسول اللہ کے سلام کے جواب میں جناب زہرہ نے کیا فرمایا؟ جب سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا. جب جناب یعنی جب بزرگ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے وعلیک السلام یا ابتا، اے میرے والد گرامی، یا جو بھی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ پہ بھی سلام ہو میری طرف سے. السلام علیکی یا ابتا، السلام علیکا یا ابتا، یا سلام علیکم، یا السلام علیکم، کسی بھی صورت میں. جب رسول اللہ نے اپنے بدن میں کمزوری اور ضعف کا ذکر کیا تو فوراً دعا دی جناب زہرہ نے. اگر بڑا کوئی انسان، گھر کا بزرگ، آپ سے اپنی پریشانی دعا کر پریشانی کا ذکر کرے تو آپ اس کے لیے دعا دیں، خواہشات کا نہیں، خواہشات کے اظہار کا. درود بھیجی محمد و اس کے. بعض اوقات کچھ ایسے نکات آتے ہیں جو میں نے لکھے نہیں ہیں، وہ میں یہاں پر ساتھ ساتھ لکھ لیتا ہوں تاکہ بعد میں اس کو یہاں پر اس کا اضافہ کر سکوں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان، پہلے جو ہے وہ شادی سے پہلے جو ہے ہر چیز خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، میں ستارے توڑ لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آسمان پہ کیا ہے، وہ ستارے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شادی کے 4 سال بعد آسمان پہ کیا ہے، نظر نہیں آتا، اندھی ہو گئی ہو، ستارے اور کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی انداز ہوتا ہے. یا شادی سے پہلے کہیں چھوٹی چوٹ لگ جائے، زمین آسمان ایک کر دیتا ہے شوہر منگیتر، ٹھیک ہے. اور جو ہے اگر شادی کے بعد دیکھ کے نہیں چلتی، اندھی ہو گئی، نظر نہیں آ رہا، کانچ پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، انداز بدل جاتا ہے، چونکہ شادی کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں وہ کچھ اور ہے، اس وجہ سے ہمارے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں. شادی کے پہلے سال بیوی جو ہے بڑا خوبصورت سا انڈا سجا کے لائے گی، اس میں پھول بھی رکھے گی اور سکھے ہوئے توس بھی ہوں گے اور 2-4 پھول بوٹے اور لچھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. شادی کے 4 سال بعد جو ہے وہ جلا ہوا انڈا لا کے پھینک دیا جائے گا ٹیبل پہ، لو کھاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال جب زوجہ وہی، شوہر وہی ہے، تو پھر اخلاق بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ خراب ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایسا نہیں ہو کہ بیوی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گولی کھا لو. گولی کیوں، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی ہے بھائی؟ جاؤ. اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کہتے ہیں. بیوی در حقیقت جب کسی پرابلم میں ہوتی ہے تو وہ راہ حل طلب نہیں کر رہی ہوتی، وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اپنی مصیبت، اپنی پرابلم کو. کہتے ہیں کہ گھر کے کام کاج عورت کو نہیں تھکاتے، مرد کے رویے اور اخلاق عورت کو تھکا دیتے ہیں. عورت کی سب سے بڑی بیماری در حقیقت مہر و محبت کا نہ ہونا ہے، جو اسے گھر میں نہیں ملتا. پیسہ، دولت، آرام، سکون نہیں ہے. سب سے بڑی عورت کی بیماری وہ کیا ہے؟ مہر و محبت اسے نہ ملے. مہر وہ مہریہ نہیں، پیار و محبت نہ ملے، مراد یہ ہے. اس بنا پر اگر کسی کے شوہر یا کسی کی بیوی کہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ جا کے پیناڈول کھا لو، نہیں، بلکہ اچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، پوچھنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے. رسول اللہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جناب زہرہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ خدا نخواستہ آپ پیناڈول کھا لیں یا آپ دوائی کھا لیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. کیا کہتی ہیں؟ اعوذک باللہ یا ابا، اعوذک باللہ یا اباتا من الضعف، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی حصار میں دیتی ہوں کہ آپ کو کوئی گزند پہنچے، کوئی ضعف پہنچے، کوئی کمزوری، ویکنس آپ کو ہو. یعنی فوراً اپنے جذبات کا، دلی خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کریں. گھر کا بزرگ کہے، ساس کہیں سر میں درد، اب یہ نہیں کہا اچھا ہوا سر میں درد، اللہ کرے اور ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ دعا کہ اللہ تعالیٰ نیک نیت کی بنا پر، نہ کہ منافقت کرے کوئی انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، پتہ لگے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور دل میں کہے کہ اللہ تعالیٰ رسی ٹائٹ کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جب بزرگ کوئی کام کہے آپ سے تو آپ بنفس نفیس خود جائیں اور وہ کام انجام دیں. اپنے چھوٹوں سے مت کہیں بیٹا ذرا نانا کو چادر دے دو, دادا کو چادر دے دو. نہیں, جناب زہرا سے کہا کہ ایتینی بالکسالی امانی وغطینی بہی, مجھے اڑا دو چادر لے کر. اور جناب زہرا گئیں, فأتیتہ, میں لے کر آئیں, وغطیتہ بہی, اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ پر وہ چادر ڈال دی. خوب نفس نفیس گئیں اور آپ کے بدن مبارک ڈالا, اور اس کے بعد نہ صرف ڈال دیا بلکہ اپنے مزید پیار و محبت کا. ایک وقت ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے موجود ہے, اے اور بی. اے نے کہا مشکل ہے مجھے, پرابلم, ویکنیس فیل کر رہا ہوں, مشکل میں, پریشانی ہے. بی نے اس کا اظہار کیا, اس نے کہا میں مشکل میں ہوں, خدا آپ کی مشکل کو دور کرے, یہ لے آؤ. یہ لا کے دے دیا, اس کی بظاہر پرابلم کسی حد تک حل ہو گئی. اب یہ جو بی ہے اس کو چاہیے کہ مزید جو ہے وہ پیار و محبت کے نور کے حالوں کو بھیجے. جناب زہرا کیا کہتی ہیں, اس کے بعد پیار و محبت بھری نگاہوں سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھتی ہیں. نہ یہ کہ ویسے کوئی بہو یہ کہے کہ ساس کو تو ہر وقت کام ہی کام ہوتا ہے, یہ لا دو وہ لا دو, یہ بنا دو وہ بنا دو, بلکہ نہیں, آپ جو ہیں مزید پیار و محبت کے احساسات کو ان لوگوں کی طرف. ایک فلیٹ میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ فلیٹ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑی ایک کشمکش والی زندگی ہوتی ہے. اوپر والے جو ہیں اگر کوئی مثال کے طور پر زیادہ اچھلے کودیں گے تو آپ ان کو جا کے کہیں گے, آپ کسی کے سر پہ اچھلے کودیں گے تو نیچے سے آ جائے گا, جناب آہستہ چلیں, سڑیا اترا کریں, آرام سے اترا کریں, کچرا نہیں پھینکیں. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں جب بھی اترتا تھا, میرا دوست جب بھی اترتا تھا, ایک بڑھیا جو تھی وہ کھڑی ہوتی تھی اور یہ کہتی تھی بھائی ایسا اترا کرو میرے سر میں درد ہوتا ہے. کہتے ہیں میں ایسا ہی اترتا تھا لیکن یہ خاتون روزانہ کھڑی ہو کے مجھے کہتی تھی. کہتے تھے میں ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا اور کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے, میں اس سے کچھ نہیں کہتا, میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا, وہ نیچے رہتی ہے, میں اوپر رہتی, لیکن جب بھی جاتا ہوں وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آہستہ چلو. اس نے کہا چونکہ آپ کے ذہن میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ خاتون نہ کھڑی ہوں لہٰذا جلدی سے اتر جاؤں, یہ جو آپ اپنے یوں کہوں کہ فکر کے جو ریز اور شعائیں پھینک رہے ہیں نا, یہ منفی ہے, اس کو مثبت کریں. آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں گے, یہ آ کے یہ کہیں گے, آپ کہیں یہ کہیں گے نہیں ماشاءاللہ تم ٹھیک ہو, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تم بہت پیار سے جاتے ہو, کہیں گے میں نے ایکسرسائز کی, پریکٹس کی اور کئی دن تک جو ہے میں یہ کہتا رہا کہ میں جب جاؤں گا تو یہ خاتون, بوڑھی خاتون میرے استقبال کے کہیں گے ماشاء اللہ تم بہت اچھے. کہ کچھ دن بعد خود بخود ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی. یہ جو آپ تن بھری نگاہوں سے, غصے بھری نگاہوں سے ساس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, ساس نے کہہ دیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ مزید مسائل کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے. لیکن آپ جتنا بھی آپ کی ساس خدا نے خاصا ظلم کرے, آپ اس کو پیار بھرے انداز سے اس کی طرف بھیجنے کی کوشش کریں, نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا, ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ایسا یہ چیزیں, یعنی یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں کہ اپنی ان شعاؤں کو وہ اگر منفی شعائیں بھیج رہی ہے, آپ مثبت شعائیں بھیجیں. درود بھیجیں محمد والے محمد. پیار بھری نگاہوں سے دیکھا, کیا کہتی ہیں, وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ فَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَلَّؤُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي اللَّيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ, کہ گویا ان کا چاند, ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو, اور میں ان کو ایسے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اب ممکن ہے کہ رسول اللہ چہرے پر انہوں نے چادر نہ ڈالی ہو, ممکن ہے, اور صرف آپ کے بدن پہ چادر ہو, بہرحال کیونکہ کہہ رہی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی, اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ چادر چہرے پہ نہیں تھی, چادر بدن مبارک پہ تھی. اب یہاں پر ہمیں کچھ اور مزید نکات ملتے ہیں. ایک پانچ سات منٹ کا وقفہ اور ہے, اس کے بعد جو ہے شاید دس منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی ایک نشست کے اختتام میں 45 منٹ کے, اس کے بعد جو ہے پھر ہم مزید نکات کو پیش کریں گے. درود بھیجیں محمد والے محمد. یہ ये बात जहन में रहे कि बुजुर्गों के एहतराम से घर की फिजा साजगार होती है, माहौल अच्छा होता है, खुशगवार होता है। घर के बुजुर्गों को चाहिए, माजर घर के बड़ों को चाहिए, यानी वालिदैन जो हैं दूसरे दर्जे के अफराद, उनको चाहिए वो बुजुर्गों की जानिब से दी जाने वाली हर आवाज़ पर लब्बैक कहें, उनकी मुमकिन मदद करें। मुमकिन है 1 घंटे में 10 दफ़ा बुलाए आपकी सास या ससुर, लेकिन जाएं। ये जो आप इजाफी काम कर रही हैं, खुदा इसका अजर दे रहा है आपको, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये फ़िक़ी और ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन बहरहाल आप जो मदद कर रही हैं इसका अजर खुदावंद आलम आपको देगा। तो जो भी मदद की आवाज़ हो, जो भी उनकी हाजत हो, हाजत रवाई हो, वो उसे पूरा करें। मुमकिन है घर के बुज़ुर्ग किसी फौरी ज़रूरत और मदद के तलबगार हों और आप नहायत अहम का भी मसरूफ़ हों, लेकिन कोशिश करें कि असराए वक्त में जितनी जल्दी हो उनकी उस हाजत को पूरा करें और उनकी मदद करें। इसी तरीके से औलाद को भी चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों की जो ज़रूरियात उसका इल्म पहले से हासिल करें, कबल इसके कि वालिद या वालिदा या सास या ससुर आपसे कहें। आपको इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ इनका नाश्ते के टाइम में, खाने के टाइम में, दवा के टाइम में, पान के टाइम में, हुक्के के टाइम मसलन, आपको इल्म होना चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि कौन कौन सी चीज़ किस वक्त पे देनी है। और अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे कादिर ना हो, ये नहीं कि नहीं है आपका बेटा तो कमा के ही नहीं देता, जितने देता है उतना खर्च हो जाते हैं, नहीं, बल्कि हंसते मुस्कराते चेहरे के साथ बुज़ुर्गों को जवाब देना चाहिए। ये बुज़ुर्गों का और घर के बड़ों का यानी वालिदैन का आपस में रवैया है कि इस तरीके से। अब इसमें कुछ पैगाम भी हैं, वो भी आपकी नज़र कर दूँ। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तकरार है। अच्छा, जनाब जहरा ने चादर ला के दी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह को उड़ाई है, यहां से क्या नुकता मिलता है? किसी चीज के सवाल पर उस चीज को बुजुर्गों की खिदमत में और उनके हाथ में पकड़ाने के बजाय आपकी मुमकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उस चीज को उनके लिए काबिल इस्तेमाल बनाए। बेटी दवा ला दो, अब आपने शीशे पकड़ा दी, उनके हाथ में राशा वो नहीं खोल सके, नहीं खोल के आप उनको दें। फला चीज़ ला दो, रज़ाई ला दो, रज़ाई लाएं और खोल के उनको दे दें, यानी उसको काबिल इस्तेमाल बनाएं उनके लिए, ना ये कि सिर्फ उनकी हाजत पूरी कर दें कि ये लो भाई। क्योंकि आप जो खंदा पेशानी से पेश आएंगे उसका नतीजा, उसकी खुश अखलाकी का नतीजा आपके सामने आएगा। ये तसव्वुर मत कीजिए कि जनाब ये कहें जनाब ये बुढ़ा ये बुढ़ी पता नहीं कहाँ से रोज़ाना आ जाता है और ये मुसीबत फिर आ गई। इस जो मनफी अल्फाज हैं, मनफी रेज जो आप भेजेंगी वो फिर आपके लिए मुसीबत का सबब बनेंगी। बज़ाहिर काम आपने करना है, मिसाल के वो चीज़ देनी है, लेकिन उसको नागवार बनाकर, मुश्किल बनाकर, तल्ख बनाकर, कड़वा बनाकर अंजाम दे, ये आपकी मर्ज़ी है। या उसको शीरी बनाकर, इबादत समझ के, खिदमत समझ के, अल्लाह की रज़ा और उसकी क़ुर्ब का ज़रिया समझ के अंजाम दे, ये आपकी मर्ज़ी है। ये ना हो कि ये ख्याल आपके दिल की फ़िज़ा को मुकद्दर करें, जब देखो हाथ फैलाए खड़े हैं, अरे दो रोटी तो बनाई थी, अभी तीसरी रोटी भी खाने के लिए तैयार हैं। ये मनफी चीज़ है ना, इनसे इज्तनाब करें। क्यों? क्योंकि ये गुमान जो हैं ये कहीं से नादिल हो गया, ये मुसीबत फिर आ टपकी, देखो जब देखो मांगते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये गुमान रिश्तों का कातिल है। ये गुमान जो कर रहे ना, मनफी गुमान रखना, बुरा गुमान रखना, अच्छा उसने कहा होगा, उसने ये सुना होगा, वो तो कहती रहती है, जेठ है, जिठानी है, नंद है, नंदोई है, करते रहते हैं, होगा, किया होगा, ये कहा होगा, ये चीज़ गलत है। बल्कि आयतुल्लाह मुज्तहिद तेहरानी फरमाते थे कि रोज़े क़यामत खुदावंद आलम आपको आपके منفی خیالات کے سبب مؤاخذہ کرے گا، کیا ہوگا، وہ تو ان کی عادت ہی یہی ہے. ایک آدھ دفعہ کسی سے غلطی ہو گئی ہمیشہ اس کو اس کی نسبتیں، وہ تو کرتا ہی یہی ہے، اس کی تو اس کا کام ہی. میری جیٹھانی تو بس توبہ توبہ اللہ اللہ نہ کھلو، بولیں گی بھی بتائیں گے بھی، لیکن اللہ توبہ توبہ غیبت بھی کریں گے، اللہ اللہ توبہ توبہ. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ رشتوں کے قاتل ہیں. منفی گمان کسی کے لیے نہ رکھیں، برا گمان برا خیال نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ سے اپنے دل کو صاف رکھیں. جان لیجئے کہ آپ کی پیار بھری نگاہیں اگر ان کے درد اور مشکل کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن کم ضرور کر سکتی ہیں آپ کا اچھا بیہیویئر. صحیح ہے کہ ساس سسر کی خدمت آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک انسانی ناطے سے آپ اور وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو رشتے اور بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. نواں نقطہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ گھرانے کے بزرگوں کی خدمت کریں، تو پھر اس میں ناک بھونکوں چڑھانے کا کوئی معنی نہیں بنتا. اسی خدمت کو اعلیٰ اخلاق و خندہ پیشانی سے انجام دیں، جس کو میں نے کہا ہنسی خوشی انجام دیں. یہ چیز جو ہے عزت، رزق اور عمر میں اضافے کا سبب بنے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہو گیا ٹائم، انشاءاللہ ایک 5-7-10 منٹ کا وقفہ ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ کچھ اور نکات ہیں وہ بھیجیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دوسری نشست میں آپ تمام خواہران کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ گھر کے بزرگ اور گھر کے بڑوں میں، یعنی والدین میں، وہ والدین بیٹا بیٹی کی شکل میں ہوں ان کے اپنے، یا داماد اور بہو کی صورت میں ہوں. کیونکہ ہم نے تین کیٹیگری آپ کے سامنے، بزرگ، دادا دادی، نانا نانی یا ساس سسر، اس کے بعد والدین جس میں زن و شوہر، میاں بیوی، اور پھر تیسرے درجے پہ اولاد. گھر کو کامیاب بنانے بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ شاید دیکھیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو تھیوریٹیکل یا نظریاتی حوالے سے مفید ہوتی ہیں، فی الوقت شاید آپ کے لیے یہ باتیں اتنی مفید نہ ہوں، لیکن اگر آپ ان کو اسی نظریاتی اور تھیوری کے انداز سے کسی کو بیان کریں گی تو یہ آپ کی تبلیغ میں بھی کام آئے گا، اور آپ کی جو ازدواجی زندگی انشاءاللہ ہوگی اس میں بھی یہ آپ کے لیے معاون مددگار ہوگا انشاءاللہ. اور اس کو بہرحال اپلائی کریے گا، یعنی جن کے گھروں میں والدین ہیں اور ساس سسر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. میں نے شبر بھائی سے کہا تھا کہ ایک نشست جو ہے وہ ہماری خانم کے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ خانم، چونکہ وہ بھی فاضلہ قوم ہیں، وہ بھی ساتھ آئی ہیں، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے ان دونوں میں نہیں آ سکی. کل انشاءاللہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، اور جس میں آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ گھل مل کر جو ہے اس موضوع پہ مزید گفتگو کر سکتی ہیں، یا کسی اور موضوع پر کر لیجیے. ہمارے میزبان پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک اجازت دیتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس لیے میرے پاس بہت ساری فون کالز جب آتی ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کوئی خاتون ہے، تو میں بنیادی طور پہ خود اوائڈ کرتا ہوں، اجتناب کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ خاتون خاتون سے ایزیلی اور راحت تر ہو کے جو ہے وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتی ہے، خاتون خاتون کے درد کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے پھر وہ خواتین رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، سوال بھول جاتی ہیں، تو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خانم کی طرف ارجاء دوں اس کو، تاکہ وہ مناسب انداز سے ان کو سمجھا سکے. تو انشاءاللہ کل وہ بھی میرے ساتھ ہوں گی، اور امید ہے کہ وہ بھی آپ سے کچھ خطاب کریں گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے خواہران نے مفاہیم کا مکمل کورس کیا ہے؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، تقریباً آدھی سے زیادہ اس وقت ہے. یہ مفید ہے ٹاپک آپ کے لیے یا نہیں ہے؟ بلا تکلف بتائیں، یہ نہیں کہ سامنے کہیں پینے بس پھنس گئے. جی یہ بہت مفید جو کہہ رہی ہیں، آپ بیچلر ہیں، شادی شدہ ہیں؟ माजरत के साथ। हाँ देखिए, मैं इसलिए पूछता हूँ कि ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके ना, आप प्रैक्टिकल हैं इस, यानी प्रैक्टिकल मैदान में इस वक्त है, अमली मैदान में, तो आपके लिए तो बहुत ही मुफीद है। लेकिन दूसरी ख्वारान जो अभी अपने घर को नहीं गई हैं, उनसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और तखस्सुसी अंदाज से गुफ्तगू की जाए तरबियती हवाले से, लेकिन वो शायद हमारे पास 2 दिन और हैं, मेरे ख्याल से 4 दिन का है ये, 2 दिन और हैं। खैर इंशाल्लाह उसमें देखते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। जब तमाम अहले बैत जमा हो गए चादर के नीचे, तो रसूलुल्लाह ने 3 सिफात बयान की हैं घर के लिए। जब सब पंजतन जमा हो गए, उसके बाद रसूलों ने फरमाया, कहते हैं फलमकतमलना वजतमअना जमीअन तहतल के साथ, चादगी जमा हो गए, अख़ज़ अबी रसूलुल्लाह बितरफ़ील किसा के दोनों सिरों को पकड़ा, तरफ़ यानी दोनों सिरों को, व औ महा बियदिहिल यमना, सीधे हाथ से इशारा किया लस्समा आसमान की तरफ, वकाला अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नहा उलाए अहलु बैती, ये मेरे घर वाले हैं, अहले बैत हैं। पहली सिफत ये है, ये चादर मौजूद, ये सब मेरे अहले बैत हैं। व खासती, मेरे खासुल खास अफराद हैं। व हामती, मेरी हिमायत का महवर है। तवज्जो फरमाइए, ये हम पढ़ लेते हैं, वाओ महाबिजदील यमना इला समा व قال اللهم انها ولا يعل بيت وخاصتي وعامتي, पढ़ दिया आपने भी सुन लिया। कह गया रसूलुल्लाह, वो कह रहे हैं कि ऐ खुदा, ये मेरे अहले बैत हैं, अपनी ज़ात से अल्लाह का रसूल इस घराने का बुज़ुर्ग शख्स नस्बत दे रहा है। जैसे मैं कहूँ किताब नखरा है, लेकिन मैं कहूँ मेरी किताब, ये मारफा हो गई। मैं कहूँ किताब उन, कोई भी किताब हो सकती है, किताब अलीन यानी अली की किताब, नखरा मारफा से मिलकर मल्टीप्लाई हुआ, मारफा बन गई। किताबी मेरी किताब, मुझसे नस्बत हो गई। अहल बैत यानी कोई भी अहल बैत, ने कहा अहल बैती मेरी, ठीक है, मेरे अहल बैत हैं ये। खासती, खासुल खास अफराद हैं। हामती, मेरी हिमायत का महवर हैं, यानी एक बुज़ुर्ग फर्द ख़ानदान की जिम्मेदारी यह है कि उन्हें अपनी ज़ात से नस्बत देकर अपने पालो बर के दरमियान जगह देने की कोशिश करे। मेरे ख़ास अफराद हैं, ये आम नहीं है कोई, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है, इनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, इनकी मौत मेरी मौत है। वो हामती, मेरी हिमायत का महवर हैं, मैं अपनी हिमायत को उनसे अलग नहीं कर सकता। एक ये चीज़ कि ये बुज़ुर्ग अफराद का काम है कि वो कहीं देखें कोई झोल है बहू के या दामाद के किरदार में, तो उसको छोड़ दें, दरगुजर करें। कोई जवान है, कच्चा है, कोई ना पुख्ता है, ना तजर्बेकार है, कोई मतलब प्यार मोहब्बत से समझाएं। बाज़ औक़ात इंसान कान पकड़ के समझाता है, बाज़ औक़ात नाम लेके समझाता है, बाज़ औक़ात इशारों के नाम समझाता है। ये बात याद रखिए कि प्यार और मोहब्बत से जो चीज़ समझाई जाएगी, दुनिया की तमाम तर सख्तियाँ भी वो तासीर पैदा नहीं कर सकती जो प्यार और मोहब्बत का लहजा दर हकीकत आप के अमल में तासीर पैदा करेगा। उसके बाद अहले खाना से इजहार मोहब्बत और वाबस्तगी का ऐलान करते हैं रसूलुल्लाह। तकरीबन 6 और 9 जुमले रसूलुल्लाह यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं। घर का बुज़ुर्ग और ख़ानदान का सरपरस्त दर हकीकत किस तरह अपने घर वालों से, अहले बैत से, अहले खाना से इजहार मोहब्बत और वाबस्तगी का ऐलान करे। लहमुहुम लहमी, अब आप तवज्जो देखिए, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनकी इनकी ज़ाहिरी तकलीफ मेरी तकलीफ, यानी मेरा गोश्त है यानी मुझे तकलीफ होगी तो मैं महसूस करूँगा ना। इनका गोश्त मेरा गोश्त, दमहुम दमी, इनका खून मेरा खून, يُؤْلِمُنِي مَا يُؤْلِمُهُمْ, جو ان کی اذیت و آزار کا سبب بنے گا وہی چیز میرے اذیت و آزار کا سبب بنے گا. یعنی قلبی روحانی وابستگی کا اعلان. يَحْزَنُونِ مَا يَحْزَنُهُمْ, جو انہیں رنجیدہ کرے گا وہی چیز میرے رنجیدہ ہونے کا سبب بنے گی. انا حرب لمن حاربهم, اس سے بڑھ کر چوتھے درجے پہ فرماتے ہیں, پانچویں درجے پر, انا حرب لمن حاربهم, میں اس سے جنگ کرنے کی حالت میں ہوں جو ان سے جنگ کرنے والا ہے. وسلم لمن سالمهم, اور اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا ہوں جو ان سے دوستی کا خواہاں ہے. اب آپ دیکھیں لب و لہجہ, لحم گوشت خون اذیت و آزار اور حزن و ملال سے بڑھ کر جنگ تک بات آ پہنچی ہے. صرف یہ نہیں کہ میرا گوشت ہے میرا خون ہے, نہیں, جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا, میں اس کا دوست ہوں جو ان کا دوست ہے. وَعَدُوُ لِمَنْ عَدَاهُمْ, میں اس سے عداوت و دشمنی کروں گا جو ان سے عداوت و دشمنی کرے گا. صرف یہ نہیں, وہ محب لمن احبهم, جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرنے والا ہوں. آٹھ اور نوی, انہم منی, خلاصہ کلام, انہم منی, یہ سب مجھ سے ہیں, وانا منہم, اور میں ان سے ہوں. زندگی دیکھیں اب, شیر و شکر, وہ بزرگ جو کہے کہ پوتا بھی میرا, پوتی بھی میری, نواسی بھی میری, نواسا بھی میرا, میری بہو بھی میری, میرا بیٹا بھی میرا, میرا داماد بھی میرا, میری بیٹی بھی میری, وہ گھر کتنا پیار و محبت کا ہوا. اگر اس طریقے سے ہم حدیث قصہ کی تلاوت کریں تو کیا ہمارے گھروں کا اخلاق یہ ہوگا کہ بہو جو ہے وہ ساس کو گھور گھور کے دیکھے, ساس جو ہے وہ دس بری برے خیالات اپنے دل میں اس کے لیے رکھے؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد اب دعا دیتے ہیں رسول اللہ, دعا دے رہے ہیں, ایک دو تین چار پانچ چھ, چھ سات, سات قسم کی دعائیں دی ہیں یہاں پر رسول اللہ نے. فجعل صلواتک, اے خدا قرار دے, نازل فرما اپنے درود و سلام کو. وبرکاتک, دو اپنی برکتوں کو. ورحمتک, اپنی رحمتوں کو. تین, چودہ, وہ غفرانک, اپنی غفران و مغفرت و بخشش کو. اور پانچواں, رضوان کا, اور اپنے رضا و خوشنودی کو. علیہ و علیہم, مجھ پر بھی نادل فرما اور ان پر بھی نادل فرما. صلوات و برکت و رحمت و غفران و رضوان, علیہ پانچ, علیہ مجھ پر بھی نادل فرما, ان پر بھی نادل, چھٹی دعا یہ. اور ساتویں, وَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی وہ گھرانہ, اب یہاں پہ کہا کہ انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے میں ان سے, لحمہم لحمی دمہم دمی, یعلمونی ما یعلمو یحزونی ما یحزونہم, انا حرب لمن حاربہم, جنگ اس سے کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا, جو ان کا دوست وہ میرے دوست, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کی عزت میری عزت, ان کی آبرو میری آبرو, ان کا درد میرا درد, ان کی تکلیف میری تکلیف, یہ سب مجھ سے میں ان سے. اس کے بعد کہا کہ اے خدا اپنے صلوات و برکت و رحمت و غفران و رضوان کو مجھ پر فرما. ایسا گھرانہ در حقیقت اس قابل ہوتا ہے کہ خدا اس گھرانے کو پاک کرے. اے خدا اذہب, دور کر دے ان سے رجس و ناپاکی و پلیدگی کو, اور ان کو ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق حاصل ہے. ایسا گھرانہ پاک ہوگا, ایسا گھرانہ شیطان سے دور ہوگا کہ جس میں ساس سسر, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, ساس بہو سب مل کر باہم شیر و شکر ہو جائیں. ہم حدیث کیسے پڑھتے ہیں, ربیع فاطمہ الزہرا الی آخر فوز برب الکعبہ, ختم ہو گئی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد دلوں میں وہی نفرت, وہی کدورت, وہی ٹیڑی ٹیڑی آنکھیں, وہی بد دعائیں, وہی برے خیالات, وہی منفی خیالات, وہی گمانے بد ایک دوسرے کے لیے, تو رحمت کیسے نازل ہوگی, برکتیں کیسے نازل ہوں گی, خدا کا درود و سلام کیسے نازل ہوگا, خدا کیسے معاف کرے گا, خدا کی رضوان و رضا و خوشنودی کیسے نازل ہوگی, خدا ہمارے دلوں سے نجاست کو کیسے نکالے گا. उस वक्त निकालेगा जब दूसरों की गुनाहों को माफ़ करेंगे, दरगुजर करेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा मैंने इनके खताओं को दरगुजर किया। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए नुकात की तरफ। पहला नुकता ये कि घर को शीरो शकर करने के लिए, घर को बाहम शीरो शकर करने के लिए बुजुर्गों का किरदार बुनियादी नौइयत का होता है, बुनियादी नौइयत का होता है। बुजुर्ग खानवादा के प्यार भरे अल्फाज दो, बुजुर्ग खानवादा के प्यार भरे अल्फाज घर के तमाम अफराद में मोहब्बत का रिश्ता कायम करने और उनकी बाहें उनके बाहिमी इख्तलाफ को ख़त्म करने में मुआविन साबित होते हैं। प्यार भरे अल्फाज, इन नौमिन ये मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी आबरू है। उसके बाद तीसरा नुकता, घर के तमाम अफराद से बिला तफरीक अपने इजहार मोहब्बत करें और उनको अपने गिर्द जमा रखें, ना ये कि ये बेटी तो मेरी है, बेटी के सामने बहू की तसलील कर रही है, या बेटे के सामने दामाद की, नहीं। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई साय साहबा है यहाँ पर खुदा नखास्ता, तो माजरत के साथ कि अगर आप किसी की बहू से बुरा सलूक करेंगे तो ये बात याद रखिएगा, आपकी बेटी भी किसी घर में बहू बन के जाएगी। बस अच्छा कुछ होता है ना कि कोई सास टेढ़ी मिल जाती है, कहती हाँ ये अपनी सास का बदला मुझ पर उतार रही हैं, ये भी होता है। इस किस्म के मनफी ख्यालात ना रखें, प्यार मोहब्बत के जज्बात शुआएं रेजिस भेजें, हाले जिनको कहते हैं। साइंस ने यह साबित किया है कि इंसान के नीयत और फिक्र से जो हैं वो शुआएं सादिर होती हैं। एक जापानी प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट करके साबित किया, और कई एक्सपेरिमेंट किए कि पानी का गिलास है, उसने कहा अगर इस पानी पर मिसाल के तौर पर या किसी भी पानी पर प्यार भरे अल्फाज बोले जाएंगे तो उन प्यार भरे अल्फाज की वजह से इसकी जो मॉलिक्यूल्स की शक्ल होगी वो बड़ी खूबसूरत होगी, और अगर बुरे अल्फाज मनफी अल्फाज गालम गलोज बदतमीज़ी बद तहजीबी के अल्फाज बोले जाएंगे तो इसके मालिक्यूल की शक्ल बहुत ही बदसूरत होगी, उलझे हुए होंगे। उसने कहा सिर्फ यही नहीं, दुनिया की किसी भी जबान में जो आप न भी जानते हो, पानी तो जानता ही नहीं, आप ना भी जानते हो, आप चीनी में कोई मनफी लफ्ज बोलें खुदा ना खास्ता इस पानी को कहें, ये इसके सामने किसी को गाली दें, इसके मॉलिक्यूल की शक्ल ख़राब होगी। और अगर जापानी जबान में या किसी और जबान में आप नहीं जानते कोई अच्छा लफ्ज़ बोलें, जब इसके मॉलिक्यूल की शक्ल अच्छी होगी। क्यों? इसलिए कि वो जो आप रेज भेज रहे हैं, हाला भेज रहे हैं, नूर यानी जो आप शुआएं भेज रहे हैं, वो दर हकीकत जन्म ले रही हैं आपकी नीयत से। नीयत से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज नीयतों के असर के साथ, असरात और इफेक्ट के साथ इस पानी पर असरअंदाज होते हैं, और वो पानी जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स की शक्ल ऐसी होती है। घर में कोई खात्मा हो, आठ रोटी पका चुकी है, आपने दो और बना दो, गुस्से से घूर के देखेगी आठ खा गए दो और खाएंगे, कैसा आटा गूंदेगी? अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं उसका लबो लहजा क्या होगा, गुस्सा, तनाव, टेंशन, तनिस, नाराज़गी, बरहमी, ये सब उस आटे पर, उस रोटी पर असरअंदाज होगी। तुम जल्दी से खाओ ताकि मैं जाऊँ। इसी तरीके से होटल, होटल में आप खाएंगे, ये खाएगा तो मेरी घर का चूल्हा जलेगा, मैं रोटी खाऊंगा, लिहाजा वो जल्दी जल्दी पकाओ, कच्ची पकाओ, सही पकाओ, ख़राब पकाओ, जल्दी से पका के भेजो इनको, ये खाएंगे मेरे घर के, उसका असर कुछ और होगा। लेकिन अगर माँ प्यार मोहब्बत से आटा गूंदे, प्यार मोहब्बत से झाड़ू दे, कपड़े धोए, उसका असर क्या होगा? वो रेस जो है आप भेजेंगे, समझ तवज्जो कर रही हैं आप? आप किसी को पानी देना हो तो बहुत प्यारा अदब से एहतराम से दें, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिला तफरीक मोहब्बत करें सबसे, ये नहीं कहा कि हसन से, हुसैन से, अली से, नहीं, बच्चे हैं बड़े हैं, सब मौजूद हैं। का इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे मैं इनसे सबसे हूं, इन सब इक्वल हैं इस घराने में आने के बाद। चौथा नुकता, अफराद खाना से अपनी दोस्ती और हिमायत का ऐलान, उनके वजूद में घर और घरेलू निज़ाम ज़िंदगी समेत फैमिली के तमाम अफराद की मुश्किल मराहल में अपनी हिमायत का ऐलान आपको न सिर्फ मजबूत मुस्तहकम बनाने में बुनियादी किरदार अदा करेगा, बल्कि आपके दरमियान कभी न टूटने वाला मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाएगा। जो आप हिमायत कर रहे हैं, एक मोहब्बत, एक रिश्ता, एक ताल्लुक कायम हो जाएगा। बुजुर्ग खानवादा की दुआ खुश्क और बेजान रिश्तों में उसी वक्त हकीकी रंग डालेगी कि जब वो खुद अपने दिल की दुआ और एहसास को हकीकी अंदाज से अमली सूरत में बिला तफरीक तमाम अहले खाना के मेंबर्स के लिए पेश करेंगे। उनकी बेरमक ज़िंदगी में रमक लेके आएगी आपकी दुआ, आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स, आपकी मुस्कुराहट, आपका उठना बैठना। सातवां नुकता, तमाम अफराद खाना के वजूद को अपने वजूद का हिस्सा करार देने से ये बात उनके दिलों में रासिख व पुख्ता हो जाएगी कि घर के तमाम अफराद भी उसी निस्बत से आपसे कभी भी अपनी हिमायत को खाली नहीं होने देंगे, हमेशा हर मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे। आठवां नुकता, मादी रिश्तों और माली वाबस्तगियों से आज़ाद होकर ही हकीकी रिश्ते जन्म लेते हैं। घर के बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी है, उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो घर के तमाम अफराद के जिस्मानी और रूहानी मिजाज और सेहत का ख्याल रखें और एक सरपरस्त की हैसियत से सब पर अपनी तवज्जो और इनायत को मरकूज करें, सब के लिए, नहीं कि खास के लिए। मुमकिन है किसी का अखलाक ज़्यादा अच्छा हो, उसे चाहती हूँ कोई तालीम में ज़्यादा अच्छा हो, किसी की नमाज अच्छी हो, लेकिन मजमूअन जब तमाम अफराद फैमिली के हों तो फिर सब पे इक्वल निगाह होने चाहिए। अब आइए पैगामात की तरफ, इसमें क्या पैगाम मिलता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। पहले ये है कि अपनी मोहब्बत को अपने तमाम करीबी ख़ास अफराद के लिए अपनी ख़ास क़ुर्बत और हिमायत का महवर करार दें। ये कहें कि मेरी हमेशा के लिए तुमसे दोस्ती है और हिमायत है। आपका अपने अफराद खाना से इज़हार मोहब्बत, उनको अपने लिए मुअज़्ज़ज़ और ख़ास शुमार करने, नीज़ उन्हें अपने दायरे हिमायत में करार देना आपके और उनके दरमियान एक मजबूत रिश्ते को जन्म देगा। और ये मजबूत रिश्ता ऐसा होगा कि जो माली वसाइल की कमी के बावजूद भी कभी पुराना नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि आपकी और उनकी मोहब्बत पैसे, स्टेटस और दुनिया के माल की मोहब्बत नहीं, हकीकी मोहब्बत है। ए दादा दादी, ए नाना नानी, ए मोहतरम सास ससुर साहिबान, आप अपने घर वालों को अपने वजूद का हिस्सा बनाइए और उन्हें यकीन दिलाइए कि वो आपसे और आप उनसे हैं। आपका अमली रवैया उन्हें बाहम शीर व शकर करेगा। उनको अपने लिए काबिल कदर बनाएं, उनसे दोस्ती का इजहार करें। छठा नुक्ता, घर की फिजा में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि घर के तमाम अफराद अहल खाना के दिल में आपकी सच्ची मोहब्बत की मिठास वो अपने दिलों में महसूस कर सकें। ये जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। अपने सातवां नुकता, अपने घर वालों को यकीन दिलाई कि आप उनसे वो आपसे हैं और आपका वजूद उनके बगैर नामुकम्मल और उनकी दुनिया आपके बगैर फीकी है। आठवां नुकता, यकीन जान लीजिए, यकीन कर लीजिए कि आपके प्यार भरे अल्फाज, मोहब्बत से लबरेज जुमले और कल्बी एहसासात की तर्जुमानी करने वाला एक एक हर्फ फैमिली लाइफ में उनकी तवज्जो, दिलचस्पी, संजीदगी और मेहनत का सबब बनेगा। जितना आप उनको इन्वॉल्व करेंगे उतना ही वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेगा, और जितना आप रूखा रवैया अख्तियार करेंगे वो उतना ही वाजिबी सरसरी सा रवैया अख्तियार करेगा और चाहे कि बददिली से टाले इस मुसीबत को, दादा है, दादी है, बहू है, सास है, ससुर है, जो भी है, आपके तशवीक आमिर जुमले आफिर उन्होंने आफरीन व तहसीन की सदाएं, प्यार भरी निगाहें, मोहब्बत भरा हसास एहसास, नवाजिश शफ़क़त और इनायत व तवज्जो सब मजमूई तौर पर अहल खाना और उनकी इज्तिमाई लाइफ को एक ऐसे मजबूत हिसार में ले आएगी कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं तोड़ सकेगी। और आखिरी दो तीन नुक्ते और आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, इसलिए ये पहले से लिखे हुए, इसलिए मैं चाहता था कि भला इनको भी शेयर करूँ आपसे। तमाम अफराद खाना के थके और खस्ता हाल बदनों को, तवज्जो फरमाइएगा, अहल खाना के थके और खस्ता हाल बदनों को एक तवानाई देने और शहर की इज्तिमाई और सियासी सूरत हाल से उनकी थकी और पुजमर्दा मुर्दा रूह और एहसास को एक नई जिंदगी देने के लिए घर के तमाम अफराद को यकजा करके गेट टुगेदर और एक गैर रस्मी खानवादगी इज्तिमा करने, साथ बैठने, गपशप करने, अहवाल पुरसी करने, दिन भर के मामलात पर हल्की फुल्की गुफ्तगु, तमाम रोज़ शब के मशागिल समेत तालीम, सेहत और माशरे की इज्तिमाई सूरत हाल के बारे में बाज़ पुरसी, मजाक और हंसी मजाक करना बहुत मुआविन साबित होता है। थके भी आए हैं, उलझे भी आए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, 10 चीज़ें, ये आप हैं जो उसको गरमाएं। बुजुर्ग हजरात की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहर इसमें और भी नुक्ते थे, वो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, अभी कितना वक्त है, 15 मिनट हैं। जब अमीरुल मोमिनीन पहुँचे रसूलुल्लाह के पास, तो उन्होंने आके सबसे पहले तो जनाब फातिमा जहरा को फरमा दी, अकबला अंदा ज़ालिक अबुल हसन, इमाम अली तशरीफ़ लाए, करीब पहुँचे और कहा कि अस्सलामु अलैकी या फातिमा, फातिमा बिनत रसूलल्लाह, तवज्जो फरमाइए, सिर्फ फातिमा ने कहा अस्सलामु अलैकी या फातिमतु या बिनत रसूलल्लाह, फातिमा और ए बिनत रसूल खुदा, प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में, फ़कुल तो मैंने कहा वालेकुस्सलाम या अबुल हसन, अबुल हसन आप पे भी सलाम हो मेरा, वया अमीरुल मोमिनीन, बच्चे सुन रहे हैं, शोहर के इज्तिमाई स्टेटस को फरामोश नहीं किया जनाब दारन ने, हाँ होंगे प्रोफेसर, मुझे क्या, मेरे तो शोहर हैं, रोटी लेके आए, जो लिस्ट मंगाई थी पूरी लेके आए हो, वो बेचारा वहीं से दबा के भाग जाएगा, जल्दी से लेके आएगा, मौलाना होंगे अपने जमाने के, ठीक हैं मौलाना हैं, क्या करें, मतलब नहीं, एहतराम, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, उसका इज्तिमाई स्टेटस बच्चों के सामने खुसूसन, खुद आपके दरमियान भी होना चाहिए, वालेकुम सलाम या अबुल हसन वया अमीरुल मोमिनीन, अब देखिए कितना प्यार मोहब्बत भरा लहजा है, सल्लल्लाहु अलैहि या अबुल हसन, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा, कि जिस घर में ये दुआ हो, ये अखलाक तस्करा किया जाए, कैसे घर नहीं तब्दील होगा, मुहाल है, नामुमकिन है कि घर तब्दील ना हो। उसके बाद क्या कहते हैं, फ़काला अमीर मोमिनीन ने फरमाया, या फातिमा, ए फातिमा, मैं तुम्हारे पास से ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ जैसे ये खुशबू मेरे भाई और मेरे चचा के बेटे रसूल अल्लाह की है। फरमाया, नाम, जी हाँ अली, हा हुआ माँ वालदैक तहत अलगसा, वो यानी मेरे वालिद और आपके चचाजाद भाई चादर के नीचे आपके दोनों बेटों के साथ मौजूद हैं। ये नहीं कहा कि हसन हुसैन के, वालदई का, आपके बेटे वालदैया नहीं कहा, मेरे बेटे कौन के भी बेटे जनाब जहरा के, लेकिन खुद ये कहना कि अली आपके बेट दोनों बेटों के साथ मौजूद हैं, खुद ये एहसास, यानी बाहिमी जो रवैया है वो कितना प्यारा होना चाहिए। अब यहाँ पे चाहता हूँ कि जो वक्त बचा है उसमें मैं इससे मुतालिक गुफ्तगू करूँ। उसके बाद जो नुक्ता मैं देने चाहूँ, बच्चों के सामने घर का बुजुर्ग दो नंबर यानी दूसरे दर्जे के जो वालिदैन हैं कैटेगरी, उसे कैसे सलूक करें। अमीरुल मोमिनीन पहुँचे, कहा कि सलाम हो ए अखी, माज़रत चाहता हूँ या रसूलल्लाह आप पे सलाम हो, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि अन अकूना माकुम तहत अलकिस्सा, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं, आप मुमकिन है प्राइवेसी में, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं, हजरत अली हैं, बच्चे हैं। कहते हटो बचो, मैं जैसे होता है बुजुर्गों, हटो हटो बड़ों के साथ नहीं बैठो, डांट देते हैं। नहीं कहा मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं, इजाज़त लेते। रसूलल्लाह ने फरमाया वालेक सलाम या अखी, मेरे भाई अली तुम पे सलाम हो, वया वसी, मेरे वसी हो तुम, नायब हो अली, व खलीफती, मेरे खलीफा भी हो, जानशीन भी हो, व साहिब लिवाई, और मेरे बाद इस उम्मत में मेरे परचमदार हो, अखी वसी खलीफती साहिब लिवाई। चार दर्जात अमीरुल मोमिनीन के बयान किए बच्चों के सामने, कि बच्चा समझे कि घर का दादा दादी नाना नानी सास ससुर एक घर के बच्चों के सामने उनके वालिदैन से कैसे सलूक कर रहा है। अखी भाई वसी जानशीन खलीफा और साहिब अली भाई मेरे परचम के परचमदार, नाम का दिन तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। उसके बाद जनाब जहरा आई और उन्होंने आके कहा कि अस्सलामु अलैके या बाता या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ए मेरे वालिद सलाम हो, कहा आप मुझे इजाज़त देते हैं अन अकूना माकुम तहत अलगिसा, कि मैं भी आके शामिल हो जाऊँ। कहा नाम का दिन तो लगा कि ये सब जमा हो गए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो वक्त बचा है 10 मिनट का, 10-12 मिनट का, उसमें चाहता हूँ ज़नो शोहर से मुतालिक कुछ बातें कि अमीरुल मोमिनीन आते हैं। अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो कितना प्यार मोहब्बत करते जनाब जहरा से, ये अच्छी तरह इल्म है आपके। जहाँ जिस किस्म में बुज़ुर्गों का मुस्बत किरदार नज़र आता है वहाँ शोहर और बीवी का किरदार भी हमें नज़र आता है। अमीरुल मोमिनीन घर में आते हैं, जनाब जहरा आके आते ही सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैक या फातिमा या बिंत रसूलिल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, फातिमा तुम पे सलाम हो। हमारे शोहर आते हैं माशरे में, अब चाय तैयार है, कोई आया तो नहीं था, 10 रंग सवाल आते ही बीवी सारे दिन चूल्हे में, बच्चों में, हांडी में, सवाई सतराई में, एक अचर पचर में पता नहीं फंसी हुई होती है। उसको भी ज़रूरत है, वो भी इंसान है, उसका भी दिल है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके भी एहसास हैं, थक जाती है वो, अपने आंसू किसी को नहीं दिखाती। ये शोहर का काम है आके उसको दिल गर्मी दे, उसको एहसास दे, उसको प्यार दे, उसके वजूद को समझे, उसकी मुश्किल को समझे। आते सलाम के अस्सलाम वालेकी, ऐसा हो जाए तुम पे सलाम हो। अब तसव्वुर की कोई शोहर है और आके सलाम करें, क्या प्यार भरा लम्हा हुआ। बीवी है, एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह मैं जब भी घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझे वेलकम करने दरवाजे तक आती है, जब जाता हूँ खुदाफजी करने दरवाजे तक जाती है, जब परेशान होता हूँ तो मुझसे कहती है अगर ये परेशानी दुनिया के लिए है तो समझ लो कि खुदा राज़िक है, परेशान नहीं हूँ, और अगर आखरत के लिए परेशान हो रहे हो तो खुदा तुम्हारी परेशानी में इजाफा करे ताकि जहन्नुम की आग से अपने आप को बचा सको। रसूल ने फरमाया खुदा के कुछ आमिल हैं, यानी जो खुदाई तालीमात अमल करने वाले आमिल, अमल करने वाले हैं, और तुम्हारी बीवी उन खुदाई तालीमात पर अमल करने वालों में से एक अमल करने वाली है। अमीर मोमिन आए, आके सलाम किया है, देखें वो बीवी कितनी थकी हुई क्यों ना, उसका शौहर आके उसको अगर مورد توجہ اور عنایت قرار دے تو وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، بیوی کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، دو بول، دو جملے۔ میں نے کہا نا کہ گھر کے کام کاج عورت کو نہیں تھکاتے، مرد کے رویے یا افراد کے رویے عورت کو تھکا دیتے ہیں۔ لہذا ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ بیوی نہ صرف یہ کہ صنف نازک صحیح، بلکہ زندگی کے لمبے اور کٹن سفر میں وہ اپنی نسوانیت اور لطیف احساسات و جذبات کے ساتھ مرد کے شانہ بشانہ ہر جگہ، ہر موڑ اور منزل پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد وہ شریک حیات کا لقب پاتی ہے۔ حیات میں شریک، شریک حیات کی وسعت کا اندازہ زندگی کی وسعت اور اس کے اونچے ترین افق کی سربلندی کو زندگی کی عظمت و سربلندی ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شریک حیات کی وسعت کتنی؟ جتنی زندگی کی وسعت ہے۔ کتنی اس میں اس کا افق ہے؟ جتنا زندگی کا افق ہے۔ شریک حیات کے دامن میں اتنا پھیلاؤ اور اتنی ظرفیت ہے جتنا دامن زندگی میں ہے۔ اس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اپنی نسوانیت کے ساتھ ساتھ ہر مرد کی عظمت و سرافرازی میں شامل ہے۔ عظمت و نسواں کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے عورت 9 سال کی عمر میں بالغ کیا ہے، جبکہ مرد 15 سال سن بلوغ میں قدم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دی، 10, 11, 12, 13, 14، 5 سال، 6 سال، بعض اوقات 4 سال، بعض اوقات 3 سال، بعض اوقات 7 سال، مختلف انداز سے ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اختیار سے، شعور سے، توجہ سے، معرفت سے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے عقل و شعور کو استعمال کرے۔ پس عورت اس قابل ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں، مرد سے پہلے عاقل بھی ہوتی ہے، بالغ بھی ہوتی ہے، باشعور بھی ہوتی ہے۔ یہ تو صلوات کا نقطہ تھا نا، یہ تو نعرہ حیدری لگنا چاہیے تھا اس میں۔ جی مجھے اندازہ ہے 5 منٹ رہ گئے۔ عورت کو خدا نے پہلے بلایا، اس بنا پر یہ کافی ہے عورت کی نسوانیت کے لیے۔ اب جا کے اپنے رشتہ داروں کو اور ہسبینڈ کو مت سنائیے گا، ورنہ کوئی قبول نہیں کرے گا کس مولانا نے بتایا، مجھے بتاؤ ذرا۔ درود بھیج محمد والے محمد۔ امیر مومن نے کیا کہا؟ السلام علیکی یا فاطمہ ویا بنت رسول اللہ، بنت رسول خدا آپ پہ میرا سلام۔ اس جملے میں در حقیقت ادب، تہذیب، تقوی اور حفظ مراتب پوشیدہ ہیں۔ انسان اپنی شریک حیات کو سلام کر کے اس کی خدمات کو سراہتا ہے۔ آپ سلام یعنی اس کو اہمیت دے رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں۔ آپ سلام کرنے میں مخاطب فرد کے اجتماعی اور دینی مقام و منزلت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے، اس کے السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، ممکن ہے نام لینے سے حفظ مراتب کا خیال نہ رکھا جا سکے۔ آپ نے کہا کسی کی بیوی کا نام فاطمہ ہے، اس نے کہا فاطمہ تم بھی سلام، نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو کنیت یا لقب کے ساتھ صدا دی جائے تاکہ اس کا احترام باقی رہے۔ کنیت یا لقب کے ساتھ کیے جانے والے سلام میں مخاطب شخص کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم سلام کرنے جیسے ایک مختصر سے جملے میں بھی آپ کے دینی، سماجی اور اجتماعی مقام و منصب کو فراموش نہیں کرتے۔ کوئی ہے آپ کے جس نے ڈاکٹریٹ کی، ڈاکٹر ہے، آپ نے کہا منا ادھر آؤ، چننا ادھر آؤ، نہیں، डॉक्टर कहें, प्रोफेसर कहें, इंजीनियर कहें, कोई आलिम है तो उसको आलिम के आलिम दीन कहें, ये नहीं हो। अरे वो गुड्डा है, अरे वो बचपन के नाम नहीं, उसका इज्तिमाई मनसब, कोई डॉक्टर है उसने किया तो उसको डॉक्टर से पुकारे। ये इज्तिमाई तौर पे एक नए अखलाक को जन्म देगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
मुन्ने की अम्मा, सलीम के अब्बा, अरे सुनना, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो औरत के मुफीद वजूद, घर और घराने को गुलशन बनाने के लिए नाकाफी हैं। अरे छोटी की अम्मा बात सुनना, छोटी की अम्मा क्या होता है? मुन्ने के अब्बा बात सुनना, मुन्ने के अब्बा क्या होता है भाई? नाम नहीं लिए, कोई और एहतराम से पुकारे। ये अलकाबात जो दिए जाते हैं हमारे, बहरहाल अब मुझे नहीं पता कि पंजाब में क्या सिस्टम है, लेकिन हिंदुस्तान में लखनऊ वगैरह में मामूलन जो बहुएं आती थीं या दामाद होते थे उनको अलकाब दिए जाते थे और उन अलकाबात से उनको पुकारा जाता था। बहरहाल मुझे नहीं पता कि आपके माहौल में और आपके शहर में क्या उसका तरीक़ाकार है। आखिर में चाहता हूँ कि जिक्र हुआ मौला कायनात का और जन्म ज़हरा का कि कितनी मोहब्बत थी, कि एक दफ़ा मेरे मोमिनीन सर झुका के आए हैं तो जनाब ज़हरा पूछती हैं, अली मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। तो अमीर मोमिनीन सर झुकाते हैं और कहते हैं, ज़हरा मैं सलाम करता हूँ, वक्त ये आ गया है कि लोग जवाब नहीं देते। जनाब ज़हरा कितनी गमखार मूनिस हैं अपने शौहर की कि जो कुछ बाहर हो रहा है अली के साथ घर में बैठकर उसकी खबर रखती है। मेरा सलाम हो बीबी आप पर, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा। यही वजह है ना, जब मौला को मस्जिद में खबर दी गई मौला बेहोश हो गए, जब पानी डाल के अफाका हुआ है तो फरमाते हैं, जहरा तुम जब तक जिंदा थी मैं अपने गमों का मदावा तेरे वजूद से करता था। ए जहरा अब तेरे जाने के बाद मैं किससे अपनी तसल्ली और तशफ़ी का इंतजाम करूँगा? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबुल हसन, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा, लान अल्लाह अदूविकी या फातिमा, लान अल्लाह अला अदूविकी या फातिमा, लान अल्लाह अला अदूविकी या फातिमा, अल्लाहुम्मा लान कातिल फातिमा ज़हरा। खुदावंदा हमारे इस बयान को जो कुछ हमने कहा सुना अपनी बारगाह में अपने क़ुर्ब और रज़ा का ज़रिया करार दे, हमें इन तालीमात पर बदर्ज अव्वल सबसे पहले अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों को, हमारे माशरे को, हमारे अखलाक व किरदार को मोहम्मद आले मोहम्मद खुसन पंजतन पाक के घरानों के साया ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। इमाम के ज़ुहर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अनसार व आवान में शरीक फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।